أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے. چلتے ہیں صحیح بخاری کے اگلے سیشن پہ. کنٹینویشن ہے کتاب الغسل کی اور حدیث نمبر 192 سے ہم شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے اور آج ہم حدیث نمبر 192 سے شروع کریں گے. کتاب الغسل ہی کی کنٹینویشن ہے. کتاب کا پیج ہے 183. باب ہے اذا جامع ثم عادا. اذا جب جامع جمع کرے یعنی تعلق قائم کرے شوہر بیوی سے, استعارہ ہے یہاں, ثم پھر عادا پھر وہ دوبارہ کرے, یعنی جب شوہر بیوی کے ساتھ ایک بار تعلق قائم کر لے تو پھر دوبارہ جانا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. روایت ہے حضرت عائشہ سے. وعنہا رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں, کنتو اور تھی میں, اطیبو خوشبو لگا دیتی. طیب عربی زبان میں خوشبو کو کہتے ہیں. دیکھیں طیب, طیب, طیبہ یہ سب ایک ہی روٹ ہے نا, اور سب میں خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو میں اس کو خوشبو لگاتی ہوں تو آپ اتنے لمبے جملے کو کیسے بولیں گے؟ اتیجیبو, دیٹس اٹ, اتیجیبو. ہاں, تو میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیطوفو علی نسائہی, پھر آپ چکر لگاتے اپنی بیویوں کے پاس, یعنی آپ اپنی بیویوں کے پاس دور کرتے. یہ یطوفو وہی ہے جو طواف بھی ہے, طاف یطوفو سے یعنی گھومنا, یہاں مراجعہ کے دورہ کرنا, تھوڑی دیر ایک کے پاس پھر دوسری کے پاس. ثم پھر یصبحو صبح کرتے, یعنی اپنی بیویوں کے پاس جاتے پھر اگلے دن صبح ہوتی کے سال میں. محرمن احرام کی حالت میں, یعنی احرام باندھتے تھے. یندخو تیبن, باوجود اس کے کہ خوشبو آپ کے جسم سے مہک رہی ہوتی تھی. یندحو کا کیا ہوگا؟ مہکنا, نکلنا, خوشبو ہونا, اور طیب خوشبو کو کہتے ہیں. پتہ کیا چلا اس حدیث میں؟ چند باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے تھے. آج کی کوئی بیوی ہوتی تو دوسری بیویوں کے پاس جانے کا سنتی تو ہو سکتا ہے لہسن ادرک کی خوشبو مل دیتی, لیکن کتنا بڑا دل تھا ازواج مطہرات کا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کے حقوق کو بھی تسلیم کیا. پھر دوسری بات دیکھیے, اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ بیوی شوہر کو خوشبو لگا سکتی ہے. ہمارے ہاں کہاں ایسا ہوتا ہے, مشکلات میں زندگی گزر جاتی ہے, اس کو کہہ لے کھپائیاں ہی لگی رہتی ہیں. تو بیوی شوہر کا تعلق بہت سافٹ ہونا چاہیے. عموماً شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ سرد مہری آ جاتی ہے, خشکی آتی ہے, تو یہ درست چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے پاس جانا, ٹھیک ہے, بار بار ہر بیوی کے پاس جاتے تھے, اور خاص طور پہ آپ جب رات کہیں اور بسر کرنی ہوتی تو عصر سے مغرب کے بیچ میں آپ اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے, اور ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کے ناطے اگر کوئی خواہش ہوتی تو اس کو بھی پورا کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دوسرے دن احرام باندھتے تھے, یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا دی حضرت عائشہ نے, یعنی اس کے باوجود کہ آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی آپ احرام باندھ لیتے تھے. تو یہاں ایک چھوٹا سا مغالطہ جس کا ازالہ ہے کہ خوشبو چونکہ استعمال نہیں کی جاتی احرام کی حالت میں, تو بعض لوگ اتنے پکی ہوتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے اس چیز پہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے تو اس سے ہمارے احرام میں کوئی حرج نہ آ جائے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیدا کرے پھر دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو وضو کر لے, لیکن وضو کرنے کا حکم واجب نہیں ہے. تو یہاں اس حدیث میں چونکہ پوری وضاحت نہیں ہے لیکن دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار شوہر اگر اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں تعلق قائم کرتا ہے, یا دن میں بھی, رات کا مطلب تو رات ہی ہے نا, دن دن ہوتا ہے, عموماً تو رات کو یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن اسی سے قیاس کیا جائے گا کہ دن میں, فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نماز سے اگلی نماز تک کے بیچ میں, ٹھیک ہے, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि नमाज का वक्त हो रहा है और आप उसल की हालत में सो रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप एक ही रात में दोबारा भी एक ताल्लुक को कायम कर लेते थे। और नबी सल्लम की हदीस से ये बात पता चलती है कि आपको आम मर्दों की निस्बत ज़्यादा जिस्मानी ताकत दी गई थी। और याद रखिए, अहदीस से भी ये बात पता चलती है कि जो मर्द अपने आप को हलाल पर रोक लेता है, जिसकी निकाह गैर औरत पे नहीं पड़ती, जो अपनी सोचों को पाक रखता है, तो उसकी जिनसी ताकत को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। ज़ाहिर इसका अपोजिट लगता है ना, हर तरफ सेक्स, रोमांस, औरत, घर, गंद बला दिखता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी ग्लैमरस जिंदगी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस तरह की गंदी चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना या ऐसी जगहों पर रहना और ऐसी हरकतों में मुलव्वस होना मर्द की मर्दानगी को कम कर देते हैं, उसकी सेक्सुअल पावर को कम कर देते हैं। और साफ वजह भी समझ आती है कि मतलब वो सारे जज्बात थोड़े थोड़े करके निकलते रहते हैं ना। आप इसको यूँ समझें कि एक पाइप है तो उसमें से पानी गुजरता है, जब सारा पानी इकट्ठा आगे टैब में जाएगा तो प्रेशर के साथ निकलेगा ना। लेकिन अगर बीच में छोटे छोटे लीक्स हों तो थोड़ी थोड़ी दूर जगह पे पानी लीक तो होता रहेगा, लेकिन एंड पे प्रेशर नहीं बनेगा। बस इसी को समझ लें, जब आप हलाल मामलात को रखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कहीं भी, ये तो एक बड़ा पर्सनल मैटर है ना, आम जिंदगी में भी, जब आप अपने जज्बात, अपनी सोचों, अपनी निगाहों, अपने वक्त, अपने माल को बेकार चीज़ों से बचाते हैं, वहाँ ज़ाया नहीं होने देते, तो हलाल चीज़ में या जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से बहुत ही उसमें बरकत होती है। मसलन जैसे माल की बात देख लें, जो लोग बहुत अपनी ज़ात पे खर्च करते रहते हैं, हर वक्त ही माल को इधर से उधर लगाते हैं, तो जब अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है तो वो प्रेशर नहीं बनता ना। लेकिन जो लोग अपनी ज़ात पे नहीं लगाते या कम लगाते हैं, तो उनको फिर जब मौका मिलता है तो फिर वो वाकई अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी और अब्दुलरहमान बिन औफ की तरह बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसी की तौफीक अता फरमाए। फिर अगली रिवायत देखिए, अन अनस रजी अल्लाह अन्हु कला, हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे नबी सल्लम, यदूर अला निसाई ही चक्कर लगा लेते अपनी सारी बीवियों के पास, फी सातिल वाहिदती, एक ही घड़ी में, यानी आप एक ही दिन में मुख्तलिफ बीवियों के पास चले जाते, मिनल लैली वन नहार, रात और दिन में, वहुन एहदा अशरता, जबकि वो 11 होती थी, यानी अल्लाह के नबी की 11 बीवियां थी और आप उन सब के पास एक ही दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर लगा लेते थे। वफी रिवायतिन, और एक और रिवायत में है, तिस उबी निस्वा, तिस उ निस्वतिन, 9 औरतें थी, यानी 11 टोटल थी जिसमें से एक वक्त में 9 भी साथ रहीं। कील अली अनसिन, हजरत अनस से पूछा गया, अवकान युतीकु ज़ालिका, क्या आप में इस कदर ताकत थी, यानी 9 बीवियों के पास जाना और उनकी ख्वाहिश को पूरा करना। कौल, फरमाया, हम तो कहते थे, कुन्ना थे हम, नतहद्दसु, हम बातें करते, हदीस से है, यानी हम तो आपस में ये कहा करते थे, अन्नहु, बेशक वो, उती, दिया गया या दिए गए नबी सल्लम को अता हुई, कुव्वत सलासीना, कुव्वत 30 मर्दों की, यानी आपको 30 मर्दों जितनी ताकत हासिल थी। अब आप देखिए कि जब इतनी ज़्यादा शहवत हो फिर उसको हलाल पे पूरा करना, फिर उस पे रुक जाना, ये अल्लाह का एक खास इनाम होता है किसी इंसान पे। कहाँ मर्द एक बीवी को खुश ना कर पाए और कहाँ इतनी बीवियों के जज्बात को पूरा करना। और फिर याद रखिए कि एक होता है मर्द के जज्बात की तस्कीन, ये कदरे आसान है, लेकिन बीवियों को रिलैक्स करना, उनकी खुशी का ख्याल रखना, अगर आप इस मौजू को डिटेल से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि नबी सल्लम ने मर्दों को इस तरह के इशारे दिए हैं, वो टिप्स बताई हैं कि जिसकी वजह से उनकी बीवियों को भी इस काम में खुशी हासिल हो और उनके लिए तकलीफ का सबब ना हो। फिर इसके बाद आप देखिए, इस हदीस से एक और चीज भी पता चल जाती है कि ऐसा मामला हजरत अनस के सामने आया। हजरत अनस को ये बातें कैसे पता चली? तो चूंकि घर के खादिमे खास थे तो अल्लाह के नबी को आकर देखते होंगे बीवियों के पास आते हुए। अब सवाल पैदा था कि बीवियों के पास आए तो ताल्लुक कायम किया कि नहीं किया, ये उनको कैसे पता चला? तो याद रखिए, उस दौर के घर हमारे घरों की तरह नहीं थे, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा होता था। बाज दफा मर्दों ने जब अपनी बीवियों से खलवत करनी होती थी तो दूसरों को कहना पड़ता था कि आप बाहर हो जाएं, और इस तरह की बातें फिर छुपती भी नहीं है। और दूसरी बात है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको बहुत हवा नहीं बना लेना चाहिए। हमारे यहाँ इसको भी एक किस्म की फहाशी और गॉसिप का जरिया बना लिया जाता है, खास तौर पे आप देखिए कि शादी के हिसाब से अगर आप देखें, दूल्हा दुल्हन को जिस तरह से इस तरह की चीज़ों पे छेड़खानी की जाती है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इस मामले को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए जैसे कि कोई वॉशरूम में जाता है। अब कभी किसी ने पूछा कितनी दफ़ा दिन में वॉशरूम में गए, क्या हुआ, कैसे गए, अंदर जाके क्या किया? तो सेम चीज़ इस ताल्लुक को भी बेसिक नीड समझते हुए बहुत ओवरलुक करना चाहिए। यही चीज़ पीरियड्स की भी है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ग्लैमरस कर लिया जाता है कि फिर खामखा ही इंसान ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर होता है। फिर यहाँ रिवायत का इख्तलाफ क्यों है? एक रिवायत में 11, दूसरी में 9 क्यों है? तो 9 बीवियाँ थीं और 2 कनीज़ें थीं, हज़रत मारिया और हज़रत रेहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, फिर अगला बाब देखिएगा, मन ततय्यबा वाग्तसला, जिसने खुशबू लगाई फिर गुसल किया। यानी खुशबू लगा कर नहाना, इसके बारे में क्या हुक्म है? अन आयशत रज़ी अल्लाह अन्हा कालत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कान्नी अनज़ुरु इला बबीसिल तीब में मफरक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह महरमन। फरमाती हैं, गोया कि मैं अल्लाह के नबी की मांग में खुशबू की चमक को देख रही थी। जी, अगर अल्फाज पे देखें तो यहाँ क्या लफ्ज आ रहा है, दो तीन लफ्ज जरा से मुश्किल है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ एक पहली लफ्ज क्या है, वबीसिल तीब। वबीस कहते हैं चमक, बैदा वबीद, बैजा हो गया, दुआत होना चाहिए मेरे हिसाब में, वबीद। ठीक है, और तीब खुशबू, यानी खुशबू की चमक, चमक होगी वबीत। और मिम फी मफरकी, मफरक क्या होगी, मांग। मफरक कैसे होगी, फरका से। जब कंघी करते हैं तो बालों की एक लाइन जो बन जाती है वो इधर के बालों को इधर और उधर के बालों को उधर कर देती है। तो मुश्किल अल्फाज की लिस्ट में लिख लीजिएगा लफ्ज़ मफरक, मांग को कहते हैं, यानी अल्लाह के नबी की मांग में खुशबू की चमक होती थी, वहुवा मुहरिमुन, जबकि वो हराम में होते हैं। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने अहराम का गुसल किया था और उससे पहले खुशबू लगाई भी थी, और खुशबू के बाद जब गुसल किया तो उसका कुछ ना कुछ चमक रही। पता क्या चला, अहराम बांधने से पहले गुसल किया जाता है, और उस गुसल से पहले अगर बालों में कोई या जिससे में खुशबू लगा ली जाए जिसका कुछ असर बाद में भी रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर अगला बाब देखिएगा, तखलील उशार इसनाइल गुसली, अलग कर देना, खिलाल करना, तखलील खिलाल करना, जैसे कि उंगलियां फेरना, अब कहाँ, शारी बालों में, इसना किस दौरान, अलगसल गुसल के, इसना कहते हैं उर्दू में भी, इसनाए, इसी इसना में हमने ये कर लिया, यानी दौराने गुसल बालों में हिलाल करना। वनह रदी अल्लाह वनह कालत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ग़्तसला मिनल जनाबती, जब गुसल फरमाते जनाबत से, गसल यदई ही। अब यहाँ से तरीका देखिएगा गुसल का, सबसे पहले अपने दोनों हाथ धोते, व तवद्दा, फिर वुजू करते, वुजू अलिस्सलाती, नमाज जैसा वुजू, सुम्मा फिर उसके बाद, इग्तसला गुसल कर लेते, सुम्मा फिर युखल्लिलु हिलाल करते, बियदई ही अपने हाथों से, शारहू अपने बालों का, यानी अपने दोनों हाथों से बालों का खिलाल करते, मतलब यह कि उसमें उंगलियां फेरते। हत्ता यहाँ तक के, इजा जब जन्ना उनको यकीन हो जाता, अन्नहु बेशक वो, कद तहकीक, अरवा बशरतहु, गीली हो गई या तर हो गई खाल उसकी। बशर कहते हैं खाल को, यानी स्किन जो होती है बालों की वो गीली हो गई। अफाद अलैहिल मा, तो उस पर पानी डाल देते, सलास मर्रातिन, 3 बार, सुम्मा फिर गसला, फिर धो लेते, साइरा जसदी ही, सारे जिस्म को। देखिए इसमें कितने आसान तरीके से गुसल का तरीका बताया गया, अपने अल्फाज में दोहरा देती हूँ। सबसे पहले दोनों हाथ धोते, हाथों में अगर कोई गंदगी है तो वो दूर हो जाती इससे। फिर उसके बाद नमाज के वुजू जैसा वुजू करते, ठीक है, फिर अपने हाथों से बालों का खिलाल करते, यानी बालों के अंदर जैसे तेल डाला जाता है इस तरह से पानी डाला जाए, क्योंकि देखिए गुस्ले जनाबत में बालों की जो जड़ें ना उसको गीला करना लाजमी होता है, तो वहाँ डालते, फिर खाल पूरी तर हो जाती तो बाकी फिर इस पर 3 बार पानी बहाते और जिस्म को धोते। ठीक है, मुराद यह कि बालों की खाल गीली हो जाए ये काफ़ी है, फिर जिस्म पर पानी डालते हैं। अगली हदीसों से ये बात ज़्यादा वाजह होगी, दोनों का फ़र्क एंड पे बता भी दूंगी, लेकिन इस हदीस से इतना समझ आ गया कि वजू के बाद सर के बालों को तर करते, रूट्स को करते, और फिर इस पर 3 बार पानी बहाते, तो सर पे जब पानी बहाया जाएगा तो बाल तो गीले हो जाएंगे और एंड पे फिर पूरे जिस्म को धोया जाएगा। ठीक है, अगली हदीस से कुछ और भी समझ आएगा। अगला बाब है, إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتمم. مسجد میں آنے کے بعد جب یاد آ جائے یا علم ہو جائے اس بات کا کہ جنابت کی کیفیت ہے تو مسجد سے نکل جائے اور تیمم نہ کرے. یعنی اذا جب ذکر یاد آ جائے فی المسجد مسجد میں آنے کے بعد انہو بے شک وہ جنوبن کے وہ جنابی ہے جنبی ہے تو یخرجو فوراً نکل جائے کما جیسے کہ ہوا وہ ولا اور نہ یتمممو تیمم کرے. روایت دیکھتے ہیں پھر بات واضح ہوگی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ قائم کی گئی یا تکبیر کہی گئی نماز کے لیے و عدلت الصفوف قیاماً اور صفیں سیدھی کر دی گئیں. عدلت کیا ہے؟ عدل سے برابر کرنا کہ جب صفوں کو سیدھا کروا دیا اللہ کے نبی نے قیام کی حالت میں لوگ کھڑے ہو گئے. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ پھر جب آپ کھڑے ہو گئے اپنے مصلے پہ ذکر تو آپ کو یاد آ گیا انہ بے شک وہ جنوبن جنابت سے ہیں. فقال پھر فرمایا لنا ہم کو مکانکم اپنی جگہ پر کھڑے رہو یعنی تم ویٹ کرو انتظار کرو. ثم رجع پھر آپ نکلے. فاغتسل پھر آپ نے غسل کیا یعنی واپس گئے اپنے گھر اور غسل کیا. ثم خرج الینا پھر آپ نکل آئے ہماری طرف. وراسہ یقطر اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. یقطر وہی جو قطروں کی صورت میں اردو میں بولتے ہیں یعنی آپ کے سر کے اندر سے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. فکبرا تو آپ نے اللہ اکبر کہا یعنی نماز شروع کرانے کے لیے. فصلینا معہ پھر ہم نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ. بہت ساری باتیں اس حدیث میں. پہلی بات یہ ہے کہ جنابت کی کیفیت میں اتنا وقت گزر چکا تھا نا کہ بھول گئے. فوراً تو یہ بات یاد ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے سو گئے اس کے بعد تو جب اٹھے تو پھر غسل بھول گیا کرنا تھا. یہ ایک فطری بات ہے تو تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر اذان یا تکبیر ہو چکی ہو پھر کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے نکلنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. عام طور پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ نماز سے جان چھڑا کے گیا, لیکن مجبوری اور ضرورت میں کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات سے یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی پتہ چلتی ہے کہ عام انسانوں کی طرح آپ کو بھی کبھی کبھی بھول لاحق ہو جاتی تھی. پھر اگلی بات دیکھیے گا کہ آپ نے صحابہ سے کہا آپ کھڑے رہیں اور میں آتا ہوں واپس. تو صحابہ کو بھی تو پتہ چل گیا کہ آپ جنابت سے ہیں. تو فطری چیزوں میں بہت زیادہ ان چیزوں کو ڈرامیٹک انداز میں پیش نہیں کرنا چاہیے. کوئی ہنسنا نہیں, کوئی مسکرانا نہیں, کوئی زیر لب صحابہ مسکرائے نہیں, کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوئی. سنجیدہ عمل ہے. جیسے کسی کو واش روم میں جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے اس طرح یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نماز کے لیے تیار ہوتے تھے. اچھے طالب علم بھی وہی ہوتے ہیں جو استاد کے آنے سے پہلے صفیں سیدھی کر کے بیٹھے ہوں. اور اگر اس وقت بھی ہماری صفیں ٹیڑھی ہیں تو پھر ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم سن کر کتنا عمل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ نے آپ کا انتظار کرنا پسند کیا لیکن خود آپ میں سے کوئی جلدی سے آپ کے مسلے پہ کھڑا ہو کر شروع نہیں ہو گیا کیونکہ امامت کی جگہ ہر ایک نہیں لے سکتا. تو لہٰذا سب نے انتظار کی. اس سے صحابہ کا صبر اور ڈسپلن بھی آپ کو دکھتا ہے. اور حدیث پڑھتے ہوئے یہی تو مزہ ہے نا, عملی زندگی کی خوبصورتیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا آپس میں تعلق تھا اور آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں واقعی فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک شاہی کلام ہے نا, اللہ کی ذات کی بات بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتے پڑھاتے مجھے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی بشریت جو ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے آتی ہوئی دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس علم سے بہترین طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اس علم کو بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیزوں کو کرنے کرانے کے بعد پڑھنے پڑھانے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے جائیں کہ جو کہ ہمیں قیل و قال میں مبتلا کر دیں. اگلا باب دیکھیے گا. من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوہ من جس نے اغتسل غسل کے عریانا برہنا یعنی نیکڈلی غسل کرنا وحدہ فی خلوت اکیلے میں تنہائی میں یعنی کوشہ تنہائی میں ننگے نہانا. کوشچن ہو سکتا ہے کہ کیا ہم کپڑے اتار کے غسل کریں یا کپڑے پہن کر کریں. اور آج ہمارے ہاں اس میں بھائی کافی زیادہ ایکسٹریمز ہیں कुछ एक तरफ चले गए कुछ दूसरी तरफ। तो आइए देखते हैं कि क्या हुक्म है। वन हु रदी अल्लाह वन हु, कौन जो इनका ऊपर जिक्र था यानी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कानत बनो इसराइल यग्तसिलूना उरातन, बनी इसराइल एक दूसरे के सामने बरहना होकर नहा लेते थे। किस तरह? यंजुरु बादुहु मिला बादिन, के बास बास को देख लिया करता था। ऑफ कोर्स जब सबके सामने नहाएंगे तो फिर वो देख तो सकते ही हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उनकी ये गलती का इजाला किया। हुआ क्या? वकान मूसा यग्तसिलु वहदहु, जबकि मूसा गुसल करते थे तन्हाई में। वहदहु से मुराद किया कि जब वो तन्हा होते थे। फकालू, तो उन्होंने कहा, वल्लाही अल्लाह की कसम, मा यमनउ मूसा, नहीं मना करती मूसा को आई ये बात कि यख्तसिला माना कि वो गुसल करें हमारे साथ, इल्ला मगर या सिवाय इसके, अन्नहु बेशक ये आदरू के वो बीमार हैं। किस बीमारी में? फतक एक बीमारी का नाम है, यानी उनके जिस्म में कोई ऐब है, इस वजह से वो हमारे सामने गुसल नहीं करते। देखिए हया को क्या नाम दे रहे हैं कि यकीनन कोई इनको तकलीफ है। खैर, फजहब मर्रतन यख्तसिलु, एक बार वो गए गुसल कर रहे थे, यानी एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से क्या हुआ कि मूसा गुसल फरमा रहे थे। फवदा सौबहु अला हजरिन, तो उन्होंने अपने कपड़े पत्थर पर रख दिए। फफर अल हजर बि सौबिही, तो चल पड़ा पत्थर उनके कपड़ों के साथ, यानी पत्थर लुढ़कने लगा, फरार हो गया ना, उर्दू में लफ्ज़ है फर्र, फरार। फखरज मूसा फी असरिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम भागे उनके पीछे, यानी असर से मुराद आसार, यानी उसके ताकुब में मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे गए। याकूलू, तो कहने लगे, सौबी या हजर, सौबी या हजर, मेरे कपड़े ए पत्थर, है मेरे कपड़े ए पत्थर, यानी ए पत्थर मेरे कपड़े तो दे दो। हत्ता नजरत बनु इसराइल इला मूसा, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने देख लिया मूसा अलैहिस्सलाम को। फ़कालू, तो वो कहने लगे, वल्लाही अल्लाह की कसम, माँ भी मूसा मिन बासिन, मूसा को तो कोई तकलीफ नहीं है। व अहज़ सौबहू, फिर उन्होंने पकड़ लिए अपने कपड़े। फतफ़िक़ बिल हजरी दरबन, और पत्थर को मारने लगे। फ़काला, तो फरमाया, अबू हुरैरा था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वल्लाही अल्लाह की कसम, यानी इन्नहु लनदबु बिल हजरी सित्ततुन अव सबअतुन दरबन बिल हजर, कि मूसा अलैहिस्सलाम की मार के 6 या 7 निशान इस पत्थर पर अभी तक मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए कि इस हदीस में भी कई बातें हमें मिली। पहली बात है नबियों की बशरियत, उनको भी गुसल की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी बात बनी इसराइल की बेहयाई, कि वो एक दूसरे के सामने गुसल करते थे। जब दीन से ताल्लुक दूर होता है तो सतर की हिफाजत नहीं होती, चाहे बच्चों के स्कूल हों और वहाँ एक दूसरे के सामने नहाया जाए, या डे केयर्स हों। साथियों ने बताया कि वह डे केयर्स में बच्चों को एक साथ नहलवाते हैं, और इसी तरह दूसरे बड़े स्कूलों में भी इसी तरह के कुछ मामले हैं, तो ये फितरत के खिलाफ है। आप देखिए कि पैदा होता है बच्चा, आप उसके कपड़े उतारेंगे ना, तो वो अपने आप को सुकेड़ता है, शर्माता है, लेकिन ऐसा ऐसा फिर उसकी शर्म हम ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात, लोगों का बातें करना, बातें करने की आदत लोगों की होती है, नबियों को भी लोग नहीं छोड़ते, किसी और को कहाँ छोड़ेंगे। फिर देखिए, मूसा की शर्म थी, यानी मूसा की खूबी थी, लेकिन उनकी नज़र में बीमारी थी। तो आज भी बाज लोग शर्म और हया को बीमारी समझते हैं। और एक और बात पता चलती है कि हकीकत कुछ और थी, लोगों को कुछ और दिख रही थी। तो जिस सोच से आप किसी को देखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, आपका नुक्ता नज़र जो होगा वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि पत्थर लुढ़क उठा, अल्लाह के हुक्म से था ना, आमतौर पे तो पत्थर नहीं लुढ़कते, लेकिन अल्लाह ताला मूसा पर लगे हुए इस इल्ज़ाम को धोना चाहते थे, तो उसके लिए इसबाब पैदा कर दिए। फिर मूसा का पत्थर के पीछे भागना और कहना, मेरे कपड़े पत्थर मेरे कपड़े, ये भी एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब कपड़े मिले तो फ़ौरन पहन लिए, ये नहीं कहा कि अच्छा जी अब देख तो सब ने लिए तो अब मैं नहीं पहनता। फिर पत्थर को मारा, ये ज़र्बे कलीम हो सकती है, और मूसा का पत्थर को मारना, इसके तो बड़े निशानात कुरान में भी है ना, पत्थर पे मारा तो चश्मे निकल आए, और दरिया पे मारा तो रास्ता खुश्क हो गया। ये ज़र्बे कलीम थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने नामुमकिनात को मुमकिन में बदला। और ये जो बीमारी जिसका जिक्र इधर किया गया, तो असल में मर्द के प्राइवेट पार्ट में एक बीमारी होती है जिसका जिक्र यहाँ है, तो इस तरह का उनको शक हो गया था। फिर इससे एक और पता चलता है कि जरूरत के तहत किसी के सामने सतर खोलना जायज है। अब मजबूरी थी, मूसा जल रहे थे, और एक रिफ्लेक्सली भी तो था ना, इंसान जब किसी ऐसी हालत में होता है तो उसको याद भी नहीं रहता कि कोई दूसरा उसको देख रहा है। जैसे आज भी कोई बाथरूम में, और अल्लाह ना करे वहां कोई मूजी जानवर निकल आए, कीड़ा वगैरह, तो इंसान वहां से बाहर आएगा तो उसको याद नहीं रहेगा। फिर अगली रिवायत में एक और नबी का जिक्र है, हज़रत अय्यूब। वन रदी अल्लाह अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, इन्हीं से रिवायत है, यानी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैन अय्यूब यग्तसिलु उरियानन फखर अलैहि जरादुम मिन ज़हब। एक मरतबा हज़रत अय्यूब नहा रहे थे बरहना होकर, फिर उन पर सोने की मकड़ियाँ या टिड्डियाँ, जराद कहते हैं टिड्डी को, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये, बरसी। फजाल अय्यूबू, फिर थे अय्यूब अलैहिस्सलाम, यख्तसी फी सौबही, जमा करने लगे या समेटने लगे उनको अपने कपड़े में। फनादाहु रब्बुहू, फिर पुकारा उनको उनके रब ने, या अय्यूब, ए अय्यूब, कि अलम अकुन अग्नैतु का, क्या मैंने तुझको गनी नहीं कर दिया इनसे, यानी ये सोना चांदी इससे आपको गनी नहीं कर दिया, अम्मा तरा इससे जो तुम देख रहे हो। काला, फरमाया, बला व इज्जती का, फरमाया हाँ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, क्यों नहीं, वलाकिन ला गनी यबी अन बरकती का, लेकिन मैं तेरे करम से बेनियाज नहीं हो सकता। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। असल में हजरत अय्यूब जब सेहतमंद हो गए थे तो अल्लाह ताला ने उनको दौलत भी वापस लौटाई, घर वाले भी लौटा दिए, उसका जिक्र है। तो उस वक्त सोने की टिड्डियां बरसी तो फिर अय्यूब लेने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा आप तो बेनियाज हैं इन चीज़ों से, तो कहा नहीं, लेकिन ये आपकी बरकत है। एक बहुत ही खूबसूरत असूल है, देखिए, तलब ना रखें, बगैर तलब के मिल जाए तो मना ना करें। कहते हैं ना, दरवेशी क्या है, तलब ना करो, कोई दे दे तो मना ना करो, और मिल जाए तो जमा ना करो, यही दुनिया का असूल रखें। इसके पीछे हंके नहीं, परेशान ना हो, खुद मिल रही है तो ले ले, मना भी ना करें, और ले लिए तब उसकी हिरस के ना पहनना, ना किसी और को देना, और संभाल संभाल के रखते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह देता है तो फिर इसी तरह देता है, ये भी इससे पता चलता है कि फिर इंसान से सिमटे चीज़ सिमटती नहीं है, और अल्लाह ताला उसका हक अदा करवा दे। फिर इससे अल्लाह ताला का कलाम करना भी साबित होता है, और इससे अल्लाह ताला का देखना भी साबित होता है कि अल्लाह ने इस हजरत अय्यूब को देखा तभी तो फिर कलाम किया था, और आवाज़ के साथ बोले थे तभी तो हजरत अय्यूब ने सुना था। ये नबियों के साथ अल्लाह ताला के खास मामलात होते थे जिसका जिक्र यहाँ हमारे सामने किया गया, और इन चीज़ों को पढ़ते वक्त हमें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, शरह सदर होना चाहिए कि अम्बिया कराम जो थे वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे होते थे, और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन तरीके से वो सारी बातें सुझा देता था जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता होती थी। अगली रिवायत देखते हैं, लोगों के सामने नहाते वक्त पर्दा करना। अतसत्तुर फिल गुस्ली इंद नास, लोगों के सामने गुसल करते वक्त पर्दा करना। अनुम्मे हानी बिनते अबी तालिबिन रदी अल्लाह अन्हा कालत, हजरत उम्मे हानी जो कि अबू तालिब की बेटी थी, इनसे रिवायत है, नबी सल्लम की क्या लगी, चचाजात बहन जी, कहती क्या, ज़हब तो इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आम अल-फत्ही, फतेह मक्का के साल, फवजदतुहु यग्तसिलु व फातिमतु तस्तुरुहु, मैंने देखा कि आप गुसल कर रहे हैं और हजरत फातिमा आपको पर्दा करवा रही हैं, एक पर्दा पकड़ के रखा हुआ है, और हजरत फातिमा ने कपड़े से पर्दा किया हुआ है, और अल्लाह के नबी दूसरी तरफ गुसल फरमा रहे हैं। फकाला, तो आपने पूछा, मन हाजी ही, ये कौन है, फकुलतु, तो मैंने कहा, अना, मैं उम्मे हानी, उम्मे हानी हूँ। बुखारी की रिवायत है। देखिए उस दौर के हालात, के बेटी को पर्दा करना पड़ रहा है कपड़े के साथ अपने बाप के गुसल के लिए, हालात देखिए, वाकया देखिए, और जाहिर है कि हजरत फातिमा उधर नहीं देख रही थी, तो इस तरह की मजबूरियों में ऐसा, लेकिन पर्दा किया, ये नहीं कि सबके सामने चले गए। आप कहेंगे आजकल तो ऐसा नहीं होता, मैं ये बातें क्यों सुना रहे हैं, हमारे पास तो अपने सेपरेट वॉशरूम्स हैं और बाथरूम है, दिस एंड दैट। तो याद रखिए, आज भी गांव में लोग खुले नलकों के नीचे बैठ के नहा रहे होते हैं एक दूसरे के सामने, तो दीन जो है ये सबके लिए, किसी एक के साथ इसका खास ताल्लुक नहीं है। फिर अगला बाब देखिए, अरकुल जुनूबी व अन्न मोमिना ला यंजुस, अरक कहते हैं पसीने को, जुनूब जुम्बी शख्स का, व अन्नल मोमर मोम, बेशक मोमिन नजस नहीं होता, यानी पसीना जो है वो नजस नहीं है मोमिन का। عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے کسی راستے میں اللہ کے نبی ملے اور ابو ہریرہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے. قالا, تو میں نے کہا, فن خنستو منہو, تو میں الگ ہو گیا. یہ خنس وہی ہے جو خناس ہے آخری صورتوں میں, من شر الوسواس الخناس. خنسا کہتے ہیں بھاگنے کو. تو کہتے ہیں کہ میں الگ ہو گیا منہو ان سے. فذهبت, پھر میں چلا گیا. فاغتسلت, پھر میں نے غسل کیا. ثم, پھر جیتو میں آیا. فقال, فرما, اين كنت يا ابا هريره, اے ابو هريره آپ کہاں چلے گئے تھے. قال, کہا, كنت جنبا, تھا میں جنبی. فكرهت, تو میں نے اس چیز کو ناپسند کیا. ان یہ کہ اجاز لیسا کا, میں بیٹھوں, یا جلسا سے بیٹھنا, کمپنی دینا, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں. و انا علی غیر طہارت, جب کہ میں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں. فقال, تو آپ نے فرمایا, سبحان اللہ, پاکی ہے اللہ کو, اللہ کے لیے. ان المومن, بے شک مومن, لا ینجس, وہ نجس نہیں ہوتا. کتنی خوبصورت بات ہے اس میں. پہلی بات دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے راستوں میں ملے اور اس وقت جنابت میں سے تھے, گویا کہ آپ نے اس لیے جنابت کو ڈیلے کیا ہوا تھا مجبوراً یا ضرورتاً یا ویسے کسی اور وجہ سے. اس طرح کیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہاں تصور ہے نا, جتنے قدم اٹھائیں فرشتوں کی لعنت ہے, ایسی بات نہیں ہے. غسل کر لینا چاہیے ایز سون ایز پاسبل, لیکن اگر کسی مجبوری سے نہ کیا جائے تو پھر چلنے پھرنے یا زندگی کے کام کاج میں کمی نہیں کی جائے گی, وہ کام ویسے ہی ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ کے دل میں اللہ کے نبی کی اتنی محبت تھی کہ آپ کی عزت کی وجہ سے آپ سے الگ ہو گئے کہ میں اس حالت میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں پتا تھا, ورنہ تو آپ خود سے جان جاتے, کیوں پوچھتے, کہیں نہ کنتا یا ابا ہریرہ. ٹھیک ہے, غیب کا پتہ چلتا تھا جب اللہ تعالیٰ بتاتے تھے اور جتنا بتاتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پسینہ آ گیا, ظاہر ہے کہ جو غسل ہے وہ اس کی حاجت تو ہے, لیکن ظاہری طور پہ انسان کو کوئی اس طرح کی نجاست تو نہیں تھی. پسینہ اگر آیا تو وہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بدن پاک ہے تو بدن سے برآمد ہونے والا پسینہ بھی پاک ہے. اب جنبی کی جو نجاست ہے نا, یہ کون سی ہے؟ حکم سے دکھ رہی ہے نا کہ اس کو جنابت کی حالت ہے. کافر کی گندگی کیا ہے؟ عقیدے کی گندگی ہے. کافر کا عقیدہ گندا جائے, کتنا بھی ظاہری طور پہ چمک سمک جائے, مومن عقیدے کی وجہ سے پاک ہے. اس لیے اگر ظاہری طور پہ جسم پہ کوئی گندگی لگ جائے تو کوئی بری بات نہیں. ہاں, ہاتھوں کے لگی اور وہ ہاتھ آپ کسی سے ٹچ کریں تو پھر گندگی ہوگی. یعنی ظاہری طور پہ جب تک گندگی کی کوئی چیز نظر نہ آئے تب تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے گا اگلا باب کیا ہے. مبیت الجنوبی اذا توضا. مبیت کہتے ہیں رات بسر کرنا, بات آیا بیتو سے, جنوب و جنابت کا, یعنی جنابت کے بعد وضو کرنے سے ہی سو جانا. اذا توضا یعنی ضروری نہیں کہ غسل کر لے, صرف وضو کر کے بھی انسان سو سکتا ہے. عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے, سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ایرقد احدنا, کیا سو سکتا ہے کوئی ہم میں سے, وہو جنوب, اور جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو. یہ بتائیے کہ یہ جو ایرقد لفظ کہیں آپ نے قرآن میں پڑھا؟ جی, سورت یاسین میں مرقدینا. ٹھیک ہے, تو مرقد سونے کی جگہ, تو یا رقد رقود سونا, یا رقد ہم سو سکتے ہیں کوئی ایک ہم میں سے. قال, فرمائے, نام, ہاں, اذا تبدا, جب کہ تم وضو کر لو, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, فل یا رقد, تو سو جائے, جنوبن, جنابت کی حالت میں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کہا کیا, وضو کر لو تو کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث میں کیا ہے کہ وہ پہلے شرمگاہ سے علائش کو دھوئے پھر نماز کا سا وضو کرے, لیکن اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جنابت کی حالت میں غسل کے بغیر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وضو کی بھی شرط نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھی. کر لیں تو ویل اینڈ گڈ, غسل کر لیں تو ایکسیلنٹ, خالی وضو کر لیں تو گڈ, اور وضو بھی نہیں کرتے تو اوکے. ٹھیک ہے, اب غسل واجب کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے باب دیکھیے گا, ازل تقل ختانان, جب مل جائیں دونوں ختان. ختان کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کو. اتقا ملنا, یعنی بیوی اور شوہر کے پرائیویٹ پارٹس جب مل جائیں تو غسل ضروری ہے, और ये कब हो, जब कपड़े के बगैर हो, उस कपड़े के साथ या किसी आड़ के साथ अगर ऐसी कोई कैफियत आ जाती है सोने में, साथ बैठने में, लेटने में, तो फिर नहीं, जबकि ये सब बगैर किसी कपड़े के हो, फिर गुसल वाजिब कैसे होगा? हदीस देखिएगा, अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा जलसा, जब बैठ जाए, बैना शाबी हल अरबा, जब चार शाखों के दरमियान, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिससे ऊपर दो बाजू हैं और जिससे नीचे दो टांगे हैं, तो चार शाखें कह दी गई किनायतन प्राइवेट पार्ट को, सुम्मा जहदहा, फिर उसके साथ कोशिश की, इशारा है मेहनत की तरफ, मर्द के बीवी से ताल्लुक कायम की तरफ, मुराद है कि दखूल, फकद वजबल गुसलू, तो वाजिब हो गया गुसल। अब आप यहाँ देखिए कि क्या पता चला कि बीवी शौहर का ताल्लुक कायम हो, पूरा अमल हो कि ना हो, वो पोजीशन हो जाए, वो कैफियत तारी हो जाए, तो फिर उसके बाद गुसल होगा। लेकिन सिर्फ, बाज़ कहते हैं, सिर्फ जिस्म का कोई हिस्सा किसी से टच करने से नहीं, बल्कि खास वो जगह टच करने से जहाँ से इंजाल होता है, उसके साथ फिर गुसल वाजिब होता है। तो यहाँ आप देखिए कि कुछ लोगों को कुछ और तरह की बातें भी मालूम है, कुछ कहते हैं कि जी सिर्फ दखूल से गुसल वाजिब नहीं होता जब तक के डिस्चार्ज ना हो, तो ये बात दुरुस्त नहीं। ये हदीस बहुत अहम है और उलमाए कराम इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि अब ये सारी बातें पढ़ते वक्त आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, हम ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें? तो आप ये बताइए कि अगर हम ये ना पढ़ें, हमें ना बताई जाए, तो कौन सिखाएगा? हमारा दीन अपनी मर्जी का दीन तो नहीं है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमने जो कुछ सीखा उस पर अमल की तौफीक दें। यहाँ किताबुल गुस्ल पूरा होता है अल्लाह ताला के हुक्म से, आगे हम किताबुल हैज़ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ जाके हैज़ का और जनाबत का तरीका, फ़र्क जो है उसको भी थोड़ा जिक्र कर दूंगी। लेकिन खुलासा कर देती हूँ कि गुस्ले जनाबत की बारीक बातें क्या हैं। पहली बात है, शौहर बीवी के ताल्लुक से गुस्ले जनाबत होता है। इसी तरह जिसको आप कह लीजिए कि मर्द को एक ख़ास वेट ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं, जो पीबीटी की अलामत है, उसकी वजह से गुस्ल की हाजत वाजिब हो जाती है। नींद की हालत में मर्द को ऐसी चीज़ देखे जिससे जिस्म में डिस्चार्ज हो जाए, तो उसमें गुसल होता है। फिर इसी तरह से गुसल फौरी कर लेना चाहिए, ना कर सकें, कुछ खाना पीना है, सोना है, तो वुजू कर लें। वुजू भी ना करने को दिल चाहे तो वैसे भी सो सकते हैं। हद क्या है? अगली नमाज से पहले, जबकि आपने नमाज अदा करनी है, तो गुसल करेंगे। चल सकते हैं, फिर सकते हैं, फरिश्ते कुछ नहीं कहते आपको। करना कैसे? सिंपल, पहले हाथों को धोकर जिस्म पर अगर कोई आलाइश है तो उसको साफ किया जाए, फिर नमाज की तरह का वुजू किया जाए, पाँव ना भी धोएं, साइड पे होके अलग से बाद में धो लें तो भी ठीक है। फिर सर पर चुल्लू बनाकर पानी जड़ों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, फिर पूरे सर पर और उसके बाद जिस्म पर पानी डाल दिया जाए। साबुन लगाना, शैम्पू करना, ये इसमें से कोई भी चीज़ लाजमी नहीं है, आप बाद में अपनी सहूलत के लिए करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे और हम अपनी गलतियों को दूर करें, कमी पेशियों को अल्लाह ताला माफ़ करें। तो यहाँ पे रुकेंगे, कोई सवाल कोई बात हो तो आप उसको नोट कर लीजिए और इंशाल्लाह ताला फिर उसको लिख के दे दें, तो हम इस पे बात करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।